श्रीमद्भागवतम के चतुर्थ स्कंध के 27वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 4। शयान उन्नध मदो महामना महारतल्पे महिषी भुजोपधी तामेव वीरो मनुते परम यतस् तमोभिभूतो न निजं परं च यत्। शयान उन्नधव मदो महामना महारतल्पी महिषी भुजोपधी तामेव वीरो मनुते परम यतस् तमो विभूतो न निजं परम चयात्। शयान उन्नाध मदो महामना महारतल्पे महिषी भुजोपधी तामेव वीरो मनुते परम यत तमो विभूतो न निजं परम चया। शयान उन्नाध मदो महामना महारतल्पे महिषी भुजोपधी तामेव वीरो मनुते परं यत् स्तमो विभूतो न निजं परं चयात्। शब्दानुवाद। शयान लेटा हुआ, उन्नधमद अत्यधिक मोहग्रस्त, महामना मनस्वी, महाअर्हतल्पे बहुमूल्य शैया पर, महिषी रानी की, भुज बाहें, उपधि तकिया, ताम उसको, एव निश्चय ही, वीरह वीर, मनुते उसने मान लिया था, परम जीवन का लक्ष्य, यतः जिससे, तमः अज्ञान से, अभिभूतः आवृत न नहीं, निजम अपना, परम परमेश्वर च तथा यत जो। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान नहीं रहा। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए ही है। पहले मनुष्य को अपने आप का दर्शन करना होता है, जिसे इस श्लोक में निजम कहा गया है। तब उसे परमात्मा को समझना होता है। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है, तब वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह न तो अपने आप का और न ही भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 2 में कहा गया है, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ति स्तमो द्वारम युषिताम संगी संगम। यदि वह महात्माओं या भक्तों की संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। यदि वह स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में अनुरक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके लिए तमो द्वारम अर्थात नारकीय जीवन के अंधकारमय क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। राजा पुरंजन महात्मा बुद्धिमान तथा उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी। आधुनिक युग में शराब, स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना अत्यधिक मलिन हो गई है। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानना। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश रूप में मानना। भगवद गीता के 15वें अध्याय का 7 श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः संस्थानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपने 6 इंद्रियों के द्वारा अत्यधिक कठिन संघर्ष करती रहती है। सभी जीवात्माएं परमेश्वर के अंश रूप है। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्रियों तथा पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। फलस्वरूप वे आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाते। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि बिना आत्म साक्षात्कार के इसे मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है। हृदय ही असली शैया है और वही सर्वाधिक मूल्यवान शैया है। जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो वह अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है और अत्यधिक विषय वासना में फंसकर आत्म साक्षात्कार के अयोग्य बन जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का प्रातःकालीन भागवत कथा सत्र में स्वागत है। पुरंजन उपाख्यान काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। इस अध्याय में वर्णन किया जा रहा है किस प्रकार जब जीवात्मा एक स्त्री के रूप धारण करती है उनका दुख वैसा का वैसा रह जाता है। कई अध्यायों में श्री नारद जी ने कहा था, जीवात्मा जब भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट रहता है, कभी पुरुष बनता है, कभी स्त्री, कभी नपुंसक, तीनों परिस्थिति में हर हाल में वो दुखी रहता है। पीछे के कई अध्यायों में पुरुष जब बना उनके दुखों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में जब जीवात्मा एक स्त्री के रूप धारण करती है तो उनका कैसा दुख है इसका वर्णन किया जाएगा। और साथ साथ ये भी वर्णन किया जा रहा है, प्रभुपाद जी इस अध्याय का नाम रखते हैं, राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। चंडवेग माने काल, जरा, मृत्यु, व्याधि। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस अध्याय में काल का प्रभाव और जरा व्याधियों का वर्णन किया जा रहा है। कुल मिलाकर के एक रूपक हैं, इस रूपक के माध्यम से श्री नारद जी उस राजा को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं किस तरह से राजा किसी भी प्रकार से भौतिक भोगासक्ति से विरक्त हो जाए। आज इस प्रसंग में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से उपुरंजनी उस राजा को आकृष्ट करने के लिए भरसक प्रयास करती है और राजा अंततगत उसके भुज पास में बंध जाता है। पिछले श्लोक में जिन लोगों ने कल भागवत कक्षा अटेंड किया था, यदि आप स्मरण करेंगे आपको स्मरण होगा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तयोपगूढ़ परिरब्ध कंधरो रहोनु मंत्री रपकृष्ट चेतनः नकाल रंगो बुबुधि दुरत्यम दिवा निषेति प्रमदा परिग्रह। वो राजा जब उनके पास वो स्त्री आती है, खूब सजधज करके श्रृंगार करके आती है और तरह तरह के सुंदर भोजन बनाकर उनको खिलाती है, फिर राजा जब तन मन से हृष्ट पृष्ट रहता है उस रानी के प्रति आकृष्ट हो जाता है और वो इतना आसक्त होता है, उनको दिन रात पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? यह नारद जी कहते हैं प्रमदा परिग्रह। स्त्री का एक नाम है प्रमदा। प्रमदा माने जिनके ग्रहण से व्यक्ति में मद ज्यादा चढ़ता है, उस मद के कारण वो अपने आप को भूला हुआ रहता है, सदैव भूला हुआ रहता है, इसलिए स्त्री को प्रमदा कहते हैं। प्रमदा को परिग्रह किया है, चारों ओर से ग्रहण करके रखा है, उनके सुंदर रूप को देखता है, उनकी सुंदरी सुंदर वाणी को सुनता है और उनके द्वारा प्रस्तुत सुंदर भोजन को भोजन करता है। चारों ओर से उसको प्रमदा ने जकड़ और पकड़ रखा है, इसलिए वो अपने स्वरूप को सदैव भूला हुआ रहता है, प्रमदा परिग्रह। अब स्वरूप की बात छोड़ दीजिए, क्या स्वरूप है क्या स्वरूप नहीं है उसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। नारद जी कहते हैं नकाल रंगो बुबुधे दुरत्ययम, दुरत्ययम काल रंगो न बुबुधे। वो राजा इतना मतवाला हो गया था, भोग में इतना आसक्त रह रहा था, वो उसको पता नहीं चलता था कि हमारी आयु समाप्त होती चली जा रही है। रंग शब्द का अर्थ होता है वेग, काल रंग शब्द का अर्थ होता है काल का अति प्रबल वेग। काल की यही विशेषता है भक्तों, काल प्रबल गतिमान है, इतना तेज गति से काल चलता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सूर्य हर मिनट में ना जाने कितने किलोमीटर भागता है, धरती भी जब अपने वो कक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती है, उनकी गति भी बड़ी प्रबल है। विज्ञान में आप लोग पढ़ सकते हो सूर्य की गति कितनी है, धरित्री की गति कितनी है। काल की गति अति प्रबल है, इसलिए काल रंगो कहा गया, दुरत्यम। पर उस गति को पार कर पाना जीवात्मा के लिए अत्यंत कठिन है, सभी उस काल के वशीभूत है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए उनसे पूछा आप है कौन, कृपा करके बताओ, उस विराट रूप में भगवान ने सीधे एकदम जवाब दिया कालोस्मि लोक क्षकृत प्रवृद्ध, लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ति, मैं महाकाल हूँ, काल के रूप में इस रणभूमि में मेरा अवतरण हुआ है, सबको मैं निगल जाऊंगा, सबको मैं चट जाऊंगा। रितेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु युद्धा, आपके अतिरिक्त इस रणभूमि में कोई जीवित नहीं बचेगा। साफ साफ भगवान कृष्ण ने कह दिया, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबुद्ध, मैं महाकाल हूं। काल भगवान का एक स्वरूप है, इसलिए जीवात्मा की कभी शक्ति हो ही नहीं सकती वो काल के परपार को चला जाए जब तक इस भौतिक देह में है। वैसे तो स्वरूपतः जीवात्मा काल के परे हैं, जैसे भगवान काल के परे हैं, पर पुरंजन राजा इतना आकृष्ट हो गया था, उसको काल वेग, काल की भीषण गति उनको पता नहीं लगता था, न बुबुधे। क्यों? प्रमदा परिग्रह, पत्नी सुख में वो मतवाला रहता था। बड़े बुद्धिमान लोग, थोड़े बहुत लोग इस बात को समझ पाते हैं, अन्यथा जो लोग भोग में मस्त है वो इस सूक्ष्म तत्व को नहीं समझ पाते किस तरह से हमारी आयु बीतती चली जाती है। आयुर हरती वई पुनसाम उद्यन अस्तन यन्यशौ तस्रिते यत क्षणनितो उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, एक उदय एक अस्त के साथ एक दिन की आयु हमारी समाप्त हो जाती है। प्रतिदिन प्रतिपल ये घटना घटती जा रही है, पर भोगासक्त मानव इतना आसक्त है वो अपने आप को भूला हुआ रहता है। ब्रज के एक भक्त ने कहा, बहुत गई अब थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही है निस्दिन आयु खेत। मान लीजिए जिसको 50 साल की उम्र हो गई है वो इस पंक्ति को रोज रटे, बहुत गई अब थोड़ी रही, नारायण अवचेत, अब तो तुझमें चेतना आ जानी चाहिए, बहुत ज्यादा तुमने गंवा दिया। काल चिरैया चुग रही है, काल रूपी पंछी, काल रूपी चिड़िया निस्दिन तुम्हारे आयु रूपी खेत को चुगती चली जा रही है। अर्थात दिन रात के बीतने से हमारी आयु एक एक दिन घटती चली जा रही है। अब तो चेतना लाभ कर ले, नारायण अवचेत, चेतना को प्राप्त कर ले। भक्त इस बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है कि भाई चेतना आ जाए, पर पुरंजन तो महाआसक्त था, उसी का प्रसंग चल रहा है। किस प्रकार उसकी आसक्ति थी, प्रमदा परिग्रह, किस तरह से प्रमदा ने उसको पकड़ रखा था, इस श्लोक में कहा गया है। सयान उन्नाध रहो मदो महामना, उन्नध मदो महामना, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता था और उसका मद इतना चढ़ा हुआ था। नारद जी कहते हैं उन्नध मदो, बहुत वो अपने आप को सुखी मानता था अपनी पत्नी के साथ। उन्नध मदह, इसका समास इस तरह से हो सकता है कि अति वृद्धो मद यश्यश उन्नध मद, जिनका मद अत्यधिक परिपक्व हो चुका है, अत्यधिक चढ़ा हुआ है, उसी को कहेंगे उन्नध मद। अर्थात अपने पास पत्नी को छोड़ करके पत्नी सुख के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता। मद, मद माने जो अपने स्वरूप को विभ्रम करा दे, विस्मृत करा दे, इसलिए मदिरा मदांध कहते हैं। मदिरा पीने वाला व्यक्ति मद से मतवाला होता है। महारानी कुंती भी कहती है, जन्मेश्वरीय सुत श्रीभीर एधमान मदह पुमान, जन्म से ऐश्वर्य से श्रुत विद्या से सुंदरता से प्राणी मात्र में मद की वृद्धि हो जाती है। और ये मद स्वरूप को विभ्रम कराने में महाकारण है। इसलिए जो व्यक्ति जितना विनय है उनके स्वरूप और उपलब्धि बहुत शीघ्र हो सकती है, जितना विनयी है, और जितना घमंडी है, जितना उसके अंदर चतुरता है, उसके अंदर अधिक मद चढ़ा हुआ रहता है, वो स्वरूप साक्षात्कार से बहुत दूर चला जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया सयान उन्नध मदो महामना महार तल्पे महिषी भुजोपधि। कैसे सोया था सयान? आप ब्लैक बोर्ड को देखिए, ये ब्लैक बोर्ड तो नहीं, श्वेत पट, सफेद बोर्ड को देखिए। सयान उन्नध मदो, महान गर्व धारण करने वाले मद से मतवाला राजा पुरंजन सो रहा था, सोया हुआ था। कहाँ सोया था? महार तल पे, बहुत सुंदर शैया बिछी हुई थी। राजा था, राजाओं के लिए सुंदर शैया, पलंग, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली बात है। एक एक बात को समझ लेनी चाहिए। राजा सोया था, कहाँ सोया था? उसके महल में सोया था। महल में कहाँ सोया था? रनिवास में सोया था। रनिवास में कहाँ सोया था? सुंदर महान कीमती पलंग पर सोया था। ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, इसका वर्णन आप करते हो? नहीं, एक विशेष बात है। महिषी भुजोपधि, महिषी माने रानी, रानी के भुजाओं के तकिया को, भुजा के ऊपर अपना मस्तक रख करके सोया था। इसको ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, सबको ध्यान ऑटोमेटिकली हो जाता है। कृष्ण का ध्यान कठिन होता है, लेकिन महिषी भुजोपाधि, देखो उपाधि और उपाधि में अंतर है। यहां शब्द देखिए उपाधि, उपाधि माने स्वरूप को ढकने वाला एक बीमारी है, उसको उपाधि कहते हैं। उपाधि माने तकिया, उपाधान, जिसमें हम सर रख करके सोते हैं, उसको संस्कृत में उपाधान कहते हैं अथवा उपाधि कहते हैं। महाराज कैसे लेटे हुए हैं? बोले महारानी के भुज को तकिया बना करके उस पर लेटे हुए हैं। एक अलंकार है, एक भाषा सौंदर्य है किसी प्रसंग को वर्णन करने के लिए। इसका अर्थ होता है रानी के सुख में सदा राजा मस्त रहता था। रानी सोई हुई है और उसके भुजा को तकिया बना करके राजा ने अपना मस्तक रखा है, ये गृहस्थ जीवन का सुख है। जिसको सुख मिला है इसको भुला दे, जिसको नहीं मिला है उसको ध्यान ना करे। कई ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, इसको ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है नहीं। बरहा पीढ़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, इसका ध्यान किया जाए। पर भागवत तो पूर्ण ग्रंथ है ना, सबका वर्णन इसमें है। राजा सोया हुआ है, लेटा हुआ है, और महामना अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा है। मेरे जैसे भाग्यशाली कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। हमारे पास सब कुछ है, दौलत है, स्त्री है, स्त्री का सुख हमें प्राप्त है न परम, उससे और श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। तामेव वीरो मनुते परम, इस सुख को वो वीर पुरंजन सर्वश्रेष्ठ मानता था। और यही हाल भौतिकवादी जगत में एक पुरुष का ही है। पत्नी सुख को, पारिवारिक सुख को वो सर्वोच्च मान बैठता है न परम, उससे और कोई श्रेष्ठ सुख नहीं हो सकता। इसके कई सारे अर्थ हैं करेंगे, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ तो नहीं हो पाएगा। ऐसे श्रीधर स्वामी भी कहते हैं, बंसीधर भी कहते हैं कि प्रत्येक शब्द का अर्थ आध्यात्मिक रूप से नहीं हो पाएगा। कभी कभी कथा सौंदर्य के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, पर यहां पर अर्थ यही है कि स्त्री के भुजपाश में बंधा हुआ राजा अपने आप को सर्वोच्च सुखी मानता था। हमसे अधिक सुखी कोई नहीं था, वो कर्मकांडी था। कर्मकांड में व्यस्त व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उनके लिए नियम कुछ दूसरा है, हमारे लिए नियम कुछ दूसरा है, हमारा धर्म है परम धर्म, पर उनका धर्म है एक सामान्य धर्म। ये कहा गया है परम धर्म शब्द की व्याख्या अलग है, सामान्य धर्म शब्द की व्याख्या अलग है। सामान्य धर्म माने वर्णाश्रम धर्म, राजा ने विवाह किया था, राजा की पत्नी है, उस पत्नी सुख को राजा सर्वोच्च मानता है। वो कहता है कि मैं गृहस्थ हूं, गृहस्थ होने के नाते पत्नी के साथ रहना मेरा कर्तव्य है, इसलिए हम ये सुख भोगते हैं, ये हमारे लिए श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर के सुख क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति यही तो मानता है, धर्म अर्थ काम, मोक्ष बाद में सोचेगा, पर धर्म अर्थ काम यही तक। त्रैवर्गी का त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन, वेद इसकी बहुत व्याख्या करता है। इसलिए उस राजा की कोई बहुत भारी गलती नहीं है, वो सोचता था, गलती जहां है बताएंगे न परम, उनको और कोई सुख अच्छा नहीं लगता था। महामना दान करता था, मैं दान भी करता हूं और मेरे पास पत्नी भी है, सुख में भोगता हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, इसलिए महामना शब्द आया, दान करता है। हर गृहस्थ व्यक्ति दान करता है और पत्नी के साथ सुख भोगता है, बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता है, अच्छा रहता है। न परम जतः, इससे और कोई श्रेष्ठ नहीं है। स्तमो विभूतो न निजम परम च जत, क्योंकि अज्ञान के कारण वो ढका हुआ था, इसलिए स्त्री सुख के अतिरिक्त कोई सुख है इसके बारे में वो नहीं जानता था, अपने को भी नहीं जानता था, और अपने से अपना मित्र अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं जानता था। न परम जत, क्यों नहीं जानता था? क्योंकि उनके चित्त में घोर अंधकार था, अज्ञान का तांडव था, इसलिए वो नहीं जान पाता था। जिनके भीतर जितना तमोगुण और रजोगुण रहेगा वो भगवान श्री कृष्ण से उतना दूर रहेगा। भगवान को समझने में बुद्धि का भी बहुत कुछ बड़ा काम है। भगवान ने कहा है गीता के 18 अध्याय में, तीन प्रकार की बुद्धि है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भयावये बंधम मोक्षम च जावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, सत्वगुण बुद्धि के ये लक्षण है। क्या लक्षण है? अर्जुन ने पूछा, भगवान ने कहा प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, प्रवृत्तिम निवृत्तिम, किससे वैराग्य लेना चाहिए और किन किन कर्मों को करना चाहिए, सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति ये जान लेता है। सात्विक बुद्धि का बड़ा महत्व है, इसलिए गीता प्रेरित करती है बुद्धिमान बनना चाहिए संसार में। सबुद्धिमान मनुष्य सो सजुक्त कृत्स्न कर्म कृत, भगवान बुद्धि की बड़ी तारीफ करते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या कार्य है क्या अकार्य है, भया भये किससे भय करना चाहिए किसमें किससे भय नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं संसार भजन करते हुए जब संसार छोड़ने की बारी आती है तो व्यक्ति को भय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? विश्वंभर अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, इसमें अगर व्यक्ति भय करता है वो कायर है। इसलिए सन्यासी का प्रथम गुण है अभयम सत्व संसुधीर, अभय माने अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फेंक देता है, समर्पित करता है, क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी परवाह नहीं करता। ऐसा नहीं कि भगवान का भजन करेंगे और अमेरिका जाएंगे कुछ पैसा रखेंगे फिर भजन करेंगे, अरे निरी बेवकूफी है। इससे बड़ा अभागा और इससे बड़ा हतभाग्य दूसरा कोई नहीं होगा। मैं अमेरिका जाऊंगा और थोड़ा पैसा रखूंगा, फ्लैट बना के भजन करूंगा, ऐसा कहीं हुआ है क्या? आज तक तो कोई नहीं कर रहा है ना। इस मामले में व्यक्ति को संपूर्ण पूर्ण तरीके से अभय पद को प्राप्त रहना चाहिए, अवश्य राखिवे कृष्ण। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तरह तरह के दृष्टांत उपमा देने के बाद, क्या यमुना में जल नहीं है, क्या पेड़ों की छाया नहीं है, क्या वृक्ष फल नहीं दे रहे हैं, अंततः कहते हैं क्या अच्युत ने अपने शरणार्थियों को आश्रय देना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। आज तक मेरे मित्रों, जिन्होंने भी भगवान की शरण ली है, किसी को भगवान ने ठुकराई है, ऐसा कोई उदाहरण है शिवाय दुर्वासा? शरणागत वत्सल, भगवान शरणागत वत्सल है। कोटि विप्रवध लाग ही जाओ, आए शरण तजई नहीं ताओ। भगवान की अभय वाणी है विभीषण के प्रति, कोटि विप्रवध। ब्राह्मण मेरे प्यारे हैं, लेकिन करोड़ों विप्रों का बद्ध करने वाला ब्राह्मण यदि मेरी शरण में आता है, आए शरण तजई नहीं ताओ, मैं उसका त्याग नहीं करता। तो भला हमको क्या चाहिए? चार रोटी चाहिए, एक छत चाहिए, उसके लिए हम भगवान की शरण को ठुकरा करके पैसे के पीछे पड़ जाएंगे? इसको मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंध मोक्षम। कौन सा कर्म करने से बंधन होता है, कौन सा कर्म करने से मोक्ष होता है? चयावित्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विक, वो सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति विचार कर सकता है। भगवान ने अर्जुन ने पूछा, प्रभु रजगुण रजगुण से अभिभूत बुद्धि क्या है? बोले जया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यम एव च अजथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। कार्य क्या अकार्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, अजथावत प्रजानाति, यथावत नहीं जानता, अजथावत ठीक ठीक से नहीं जान पाता, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या कार्य है क्या अकार्य है, यानी कि संदेह के बिंदु में वो रहता है, ठीक ठीक निर्णय करने में ताकत उसमें नहीं होती है। उस प्रकार के गुण से जब बुद्धि अभिभूत होती है, उस बुद्धि रजगुण से प्रभावित है ऐसा माना जाएगा। ये बहुत खतरा है, रजगुणी वाली बुद्धि जो है ये बेकार है, आपको निर्णय देने में बहुत दिक्कत कराएगी। बुद्धि का लक्षण है निश्चयात्मिका, का बुद्धि निर्णय दे दे, पर यह बुद्धि निर्णय नहीं दे सकती। और तमगुणी बुद्धि बिल्कुल उल्टी दिशा में चलती है। अधर्मम धर्ममिति जा मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिसा पार्थ तामसी, बिल्कुल उल्टी दिशा है। धर्म को अधर्म मान लेगी और अधर्म को धर्म मान लेती है। अज्ञान से ढकी हुई बुद्धि, उसी को कहते हैं तमगुणी बुद्धि। और जब तक रजगुण और तमगुण है तब तक बुद्धि उससे ग्रसित है। तो हम कृष्ण को परम मित्र कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते। ये कितना बड़ा चिंता का विषय है। जब तक हमारी बुद्धि तमगुण से रजगुण से ग्रसित रहेगी, तब तक हम श्री कृष्ण के मर्म तक नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण प्राप्ति तो दूर की बात है। एक प्रसंग हमें याद आता है, इस प्रसंग में जब सनातन गोस्वामी देहत्या करने के लिए जगन्नाथपुरी चले गए थे, उनके शरीर में कुछ चर्म रोग हो गया था, उसके चलते वो परेशान थे और अपने में बड़ी हीन भावना हो गई थी। नहीं नहीं, रथ यात्रा होगी, रथ के पहिए के नीचे हम अपना शरीर को शांत कर देंगे। जाकर हरिदास की कुटिया पर ठहरते थे। सनातन गोस्वामी के मनोभाव को चैतन्य महाप्रभु जानते थे, अंतर्यामी है। एक दिन सनातन को बुला करके कहे, सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाए, कोटि देह क्षणे आमी छाड़िते पाराई। सनातन, देह त्याग करने से यदि कृष्ण की प्राप्ति हो जाती, एक क्षण में हम 1 करोड़ शरीर त्याग कर सकते हैं। किसकी क्षमता है 1 क्षण में 1 करोड़ शरीर त्याग कर देगा? महाप्रभु कहते हैं कि यदि सनातन देहत्याग से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं एक क्षण में 1 करोड़ शरीर त्याग कर दूंगा। देहत्यागे कृष्ण ना पाए पाइए भजने, देहत्याग से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। सनातन ने पूछा, हे भगवान फिर कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? पाइए भजने। कृष्ण प्राप्ति उपाय कौन नहीं? भक्ति भी नहीं। कृष्ण प्राप्ति का उपाय भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। हे सनातन, ये देह त्याग आदि यतो तमो धर्म रजतम धर्मे ना पाइए कृष्णेर मर्म। मर्म माने किंचित, थोड़ा तत्व। बोले जब तक बुद्धि में रज का आवेश है, तम का आवेश है, तो कृष्ण तत्व को समझना बड़ा ही दुष्कर है। ना पाइए कृष्णेर मर्म, यू नेवर अंडरस्टैंड, नो वन कैन अंडरस्टैंड। देह त्याग आदि यत तमो धर्म तमो रज धर्मे ना पाइए कृष्णेर मर्म। कैसे होगा? और पुरंजन, बिल्कुल पुरंजन इस आसक्त ध्यान देना चाहिए। कथा पक्ष में तो ये मैंने कह दिया, राजा रानी के भुजबंध में आकर्षित था, उनके भुजाओं को तकिया बना करके सोया था। इसका मतलब दिन रात केवल पत्नी सुख में व्यस्त रहता था। कथा तो यही है, लेकिन अध्यात्म यह है, वो रानी पुरंजनी रजगुण से ग्रसित थी। वो बुद्धि जो प्रत्येक, वो राजा की बुद्धि, वो तमगुण रजगुण से ग्रसित थी, यानी कि अति रज प्राबल्य था उसमें। रजगुण की प्रचुरता जिस बुद्धि में है, उसी बुद्धि का नाम है पुरंजनी। और पुरंजनी बुद्धि कभी भी किसी को भगवान को समझने में मौका नहीं देती है। ये भी खासियत है, इसीलिए कहा गया राजा जो जीवात्मा वो चुपचाप उसके भुज पास में पड़ा हुआ है, उसी को ही सर्वोच्च। ये रजगुणी बुद्धि खतरनाक बुद्धि है, पुरंजनी बड़ी खतरनाक। इसलिए वो अपने को, उनको समझने में नहीं दिया। स्तमो भी भूतो न निजम परम चजत, और वो रजगुण से उसको ढक रखा था, तमगुण अज्ञान उसके मन में तांडव कर रहा था। यहां सयान शब्द का, सया शब्द का अर्थ होता है महार तल्प अंतःकरण। पुरंजनी नामक बुद्धि के साथ अथवा रज प्रभाव बुद्धि के साथ जीवात्मा पुरंजन उस अंतःकरण रूपी शैया पे महान सुख भोग कर रहा है। अब कृष्ण को काहे को पूछेगा? कृष्ण विज्ञान की जानकारी कैसे होगी? न निजम, अपने आप को नहीं समझ रहा है। निजम मैं इन चीजों से परे हूं, इसका ज्ञान तक नहीं है। प्रभु पैजी तात्पर्य में कहते हैं आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है वो अपने आप को भौतिक आवरण से भिन्न माने। भगवान ने गीता में संकेत किया, संकेत नहीं, क्लियर रूप से कहा है, अपरियम मितस्त्वन्य प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये जीवात्मा पराप्रकृति है, श्रेष्ठा प्रकृति है। भूमि रापो नल तेज के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, ये भाव है। तो जीवन में रजगुण जब प्रबल होता है, वो बुद्धि इस तरह से दबाती है। महान भक्तों ने कहा है, मन बुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, न मे श्रोत्र न जिह्वा न घ्राण न नेत्रे, न व्युम्नि न भूमिर, न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपो शिवो अहम शिवो अहम। ये आदि शंकराचार्य का कथन है। ये शिवो हमको लेकर के बड़ा तांडव होता है। हमेशा शब्द को रूढ़िवादी शब्द में नहीं समझना चाहिए अर्थ में। शिव शब्द का अर्थ होता है मंगलमय। यहाँ शंकराचार्य समझाते हैं कि मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं ना तो मन हूं, ना तो मैं बुद्धि हूं, ना तो मैं चित्त हूं, ना तो मैं अहंकार हूं। अच्छा, क्या तुम इंद्रियां हो? ना 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 ना, ना श्रवण, ना नेत्रे, ना घ्राण, ना जिह्वे, ना तो मैं जिह्वा, ना तो मैं रसन इंद्रियां हूं, ना तो मेरी इंद्रियों के साथ कोई लेना देना है। अच्छा, पंच महाभूत ना व्योमनोर ना भूमि, ना मैं आकाश हूं, ना मैं भूमि हूं, ना तेजो ना वायु हो, ना तो मैं तेज हूं, ना तो मैं वायु हूं, फिर तुम हो कौन? आदि शंकराचार्य कहते हैं, चिदानंद रूपो शिवो अहम शिवो अहम, मैं चिदानंद रूप हूं। गुणात्मक रूप से भगवान से हमारी अभिन्नता है। भगवान श्री कृष्ण सत्यम शिवम सुंदरम है, वो मंगलमय है। जीवात्मा उसी प्रकार मंगलमय है, पर दुर्भाग्य यही है कि हमारी चेतना कलुषित हो गई है। चिदानंद रूप होकर के भी हम अपने आप को ये चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इसी के साथ हमारा तादात्म्य हो गया। शिवो अहम शिवो हम शब्द का अर्थ नहीं कि हम भगवान शंकर है, नहीं, हम मंगलमय है। यही बात तो भगवान ने भी कहा, ममेवान सुजीव लोके, मेरा अंश है, मेरी शक्ति है। तटस्थ शक्ति होने के कारण हम भगवान के जैसे ही गुण वाले हैं। इसलिए चिदानंद कहना कोई दूसरा भिन्न अर्थ बोधक शब्द नहीं है। चिदानंद, चिदानंद मय देह तुम्हारी जानत को अधिकारी। भगवान श्री कृष्ण जैसा ही है, हमारा रूप वैसा ही है। इसलिए राजा मोक्ष को ध्यान नहीं दिया, भोग को ध्यान दिया है। निजम, यहां श्लोक में कहा गया, स्तमो विभूतन निजम, अपने रूप को नहीं जाना। इसलिए कि ये तो सारी साधनाएं हैं, अध्यात्म मार्ग की जितनी साधनाएं हैं, अपने आप को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए। पर हम अपने आप को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे। ये विशेष बात है। प्रभु पाजी जदा कदा कहीं लिखे हैं कि जैसे सूर्य का उदय होता है, सूर्य के प्रकाश से हम अपने आप को समझ पाते हैं, ऐसे जब भगवान का साक्षात्कार होगा, जीवात्मा अपने आप का साक्षात्कार करेगा। लेकिन रजगुण है, तमगुण है। भगवान श्री कृष्ण भी चिदानंद है। कविराज गोस्वामी इस बात को कहते हैं, सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंदमय चिदानंद देह सर्वमय सर्वेश्वर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इस पयार के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को चिदानंदमय बताते हैं। सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर, हमारे प्रभु कैसे हैं? किशोराकृति, किशोर है, 14 15 16 साल के जैसे ही रहते हैं। और क्या है? चिदानंद देह, उनका शरीर, उनका दिव्य देह चिदानंद बपु है। सर्वाश्रय, सबके आश्रय है। सर्वेश्वर, सबके नियंता है, सबके ईश्वर है। क्योंकि भगवान चिदानंद है, इसलिए जीवात्मा भी चिदानंद है। पर दुर्भाग्य कैसे जानेगा? जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति बिना, भक्ति के अतिरिक्त श्री कृष्ण के प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं। पर रजगुण का प्रभाव है, तमगुण का प्रभाव है, जीवात्मा के ऊपर जब तक रजतम का प्रभाव है, वो उनको समझने के लिए नहीं दे रहा है। इसलिए इस अध्याय, इस श्लोक का जो भाव है यही है, अंतःकरण रूपी शैया में जीवात्मा राजा अपने रजगुण प्रबला बुद्धि के साथ जब तक भोग करता रहेगा, तब तक उसके लिए आत्म साक्षात्कार बड़ा दूर रहेगा। प्रभु पाजी ने सार संक्षेप में तात्पर्य में कहा है, यद्यपि स्त्री का संग इतना वो आत्म साक्षात्कार से हमको दूर ले जाता है, पर आधुनिक समाज में यही शिक्षा दी जा रही है। ये नहीं दिया जा रहा है कि दोनों के प्रति आकर्षण बहुत ही हानि पहुंचाने वाला है। एक शब्द बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत अधिक आसक्ति, जितना आवश्यक है पति पत्नी उस भाव में रह सकते हैं, पर बहुत ज्यादा आसक्ति आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इस श्लोक का तात्पर्य से हमको ये शिक्षा ले लेनी चाहिए कि हमारी बुद्धि, हमारे अंतकरण को यदि हम पवित्र रखना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण नाम का जप करना बहुत जरूरी है। एतन् निर्विद्य मानानाम इच्छताम अकुतो भयम् योगीनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से निर्भय होना चाहता है, उसको चाहिए कि अपने जिह्वा से सदैव भगवान नाम का जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भाव है, जब तक अंतःकरण कलुषित रहेगा तब तक हमारे लिए आत्म साक्षात्कार बहुत दूर पे रहेगा। इसी श्लोक के माध्यम से नारद जी इस उपाख्यान के माध्यम से प्राचीन भर राजा को समझाना चाहते हैं कि रजगुण तमगुण से दूर रहो, भगवान का भजन करो, जिससे अंतःकरण निर्मल होगा और निर्मल अंतःकरण में भगवान का साक्षात्कार हो पाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, हाँ, अखंडानंद जी प्रश्न करेंगे, बोलो।